स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ इकबाल अहमद। तारीख 22 जनवरी और दिन बुधवार। नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, लेकिन विरोधियों ने कहा धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे।
अराजकता वाला स्थिति तो हम लोग नहीं बना रहे, सरकार बना रहे। सरकार मतलब बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है, अंधी होती है। कहते हैं ना, पार्लियामेंट अंधी हो जाती है, बहरी हो जाती है, गूंगी हो जाती है। तो सड़क संसद बन गया, तो शाहीन बाग संसद का मिसाल कायम किया है।
दुनिया जहान में आज बात होगी अंगोला की।
ये तो ऑर्डर करती थी डायरेक्टली टू द मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट। अब वो लोग भी मानते थे, व्हाटएवर शी सेड वो मान जाते थे, नहीं मानते थे वो राष्ट्रपति को कंप्लेन करती थी, वो हटा देते थे नौकरी से या जेल में डाल देते।
और भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी 144 याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद कहा कि सीएए पर बिना सुनवाई के रोक नहीं लगाई जा सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर वो संवैधानिक पीठ बनाएंगे तो वही पीठ अंतरिम आदेश देगी। भारत विश्व डेमोक्रेसी इंडेक्स में 10 पायदान नीचे खिसक गया है। साल 2019 की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में भारत का नंबर 41 था, जो अब कमजोर होकर 51 हो गया है। भारत में हाल में लागू किए गए कुछ कानूनों के विरोध को इसका जिम्मेदार माना जा रहा है। कुल 167 देशों में उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर है। चीन सरकार ने वुहान की जनता को सलाह दी है कि वो मुख्य नेशनल हॉलिडे पर शहर से बाहर न जाएं, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इस वायरस से चीन में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस मामले को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन आज एक आपातकालीन बैठक भी कर रहा है, जिसमें चर्चा की जा रही है कि क्या इस नए वायरस को लेकर पूरे विश्व में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर देनी चाहिए। दावोस में एक प्रेस वार्ता के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, क्या उन्हें लगता है कि महाभियोग के मुकदमे में उनके पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को गवाही के लिए बुलाया जाना चाहिए। इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से उन्हें गवाही के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। साथ ही ट्रंप ने इस बात पर भी चिंता जताई कि बोल्टन कुछ ऐसी जानकारियों का खुलासा कर सकते हैं जिससे उनके लिए मुश्किल पैदा होगी।
He knows some of my thoughts. He knows what I think about leaders. What happens if
वो मेरे कुछ विचारों के बारे में जानते हैं। वो जानते हैं कि मैं नेताओं के बारे में क्या सोचता हूँ। अगर वो ये बता देंगे कि मैं किसी नेता के बारे में क्या सोचता हूँ और वो बहुत सकारात्मक नहीं है, तो इससे परेशानी खड़ी हो जाएगी। उन्हें और भी कई चीज़ें पता हैं। उन्होंने बहुत अच्छी स्थितियों में पद नहीं छोड़ा था, इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नहीं होना चाहिए। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लेबनान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हसन दीब ने कहा है कि देश बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। नई सरकार ने अपनी पहली बैठक की और तय किया कि सरकार की प्राथमिकता विदेशी मदद हासिल करना होगी, ताकि बढ़ते कर्ज के संकट से निपटा जा सके। कई महीनों से चल रहे प्रदर्शनों की वजह से पिछली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। प्रदर्शनकारी पूरे राजनीतिक तंत्र को भ्रष्ट और विफल बताते हुए इसे बदलने की मांग कर रहे थे। लोग नई सरकार से भी खुश नहीं हैं। इसकी घोषणा के कुछ घंटे बाद ही फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, जिस तरह हमने पिछली सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर किया क्योंकि वो लोगों की मांग नहीं सुन रहे थे, ऐसा ही हश्र इस सरकार का भी होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। ये थे एक प्रदर्शनकारी के शब्द। सऊदी अरब के प्रशासन ने उन खबरों को बेतुका बताया है जिसमें कहा गया है कि अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस का मोबाइल फोन सऊदी के क्राउन प्रिंस ने हैक करवाया था। खबरों के मुताबिक 2018 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अकाउंट से कथित तौर पर बेजोस को एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, जिसके बाद उनके फ़ोन से बहुत सा डेटा निकाल लिया गया। ईरान ने कहा है कि वो उस यात्री विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा की जांच करेगा जो उसने गलती से मार गिराया था। हालांकि ईरान के पास इस काम को करने के लिए ज़रूरी उपकरण नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मदद के लिए फ्रांस और अमरीका से संपर्क किया। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। آج ہے جنوری کی 22 تاریخ اور دن ہے بدھوار. آپ اس کارکرم کو ریڈیو کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل فون پر بھی لائیو سن سکتے ہیں. کارکرم کی شروعات ناگرکتا سنشودھن قانون سے. سپریم کورٹ نے ناگرکتا سنشودھن قانون پر فی الحال روک لگانے سے صاف انکار کر دیا ہے. مکھیہ نیایادھیش جسٹس ایس اے بوبڈے کی ادھیکشتا والی 3 سدسیہ کھنڈ پیٹھ نے 140 سے زیادہ یاچکاؤں پر سنوائی کی. کیندر سرکار کے وکیل نے کہا کہ تمام یاچکاؤں کا جواب دینے کے لیے اسے اور وقت چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا کہ کیندر سرکار کا پکش سنے بغیر قانون پر روک نہیں لگائی جا سکتی ہے. کورٹ نے کیندر کو 4 ہفتوں کا وقت دے دیا. لیکن اس بیچ ویرودھ کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ پردرشن جاری رہیں گے. سنیے دلنواز پاشا کی یہ رپورٹ.
سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد پردرشنکاری کیا کریں گے, اس سوال پر اس مہیلا پردرشنکاری کا کہنا تھا.
دیکھیے, سپریم کورٹ کی ہم نے بابری مسجد کی بات مانی تھی نا, مانی یا نہیں مانی, ہم نے کچھ بھی نہیں کہا, ہم خاموشی سے صبر کے ساتھ ہم نے اس فیصلے کو مانا. ہم روڈ پر نہیں آئے, لیکن آج ہم روڈ پر آ گئے. اس ٹائم بابری مسجد کے ٹائم پر روڈ پر نہیں آئے تھے, لیکن آج روڈ پر آ گئے. جب ہمیں آپ نے روڈ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے, تو پھر اب سپریم کورٹ بھی جو فیصلہ دے گا اگر ہمارے حق میں ہوگا تب تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ہماری جیسا چل رہا چلے گا.
دلی کے شاہین باغ میں مہیلائیں 38 دنوں سے دھرنے پر بیٹھی ہیں. پردرشن میں شامل ایک ماں کا کہنا تھا کہ اس ماحول کا ان کے بچوں پر گہرا اثر ہو رہا ہے.
وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ نفرت 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 اور نفرت, صرف نفرت, اور یہ اتنا بڑا امپیکٹ بچوں کی لائف میں پڑ رہا ہے. بچوں کے بورڈ کے ایگزامس ہیں, وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, اب کیا رول ہوگا, اب کیا ہوا, آج کس نے کیا بولا, آج مودی جی نے کیا بولا, آج امیت شاہ جی نے کیا بولا.
وہیں کیندر سرکار نے اسپشٹ کر دیا ہے کہ وہ ناگرکتا سنشودھن قانون پر 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. پردرشنکاری بھی پیچھے نہ ہٹنے کی بات کر رہے ہیں. اگر ایسا چلتا رہا تو ایک دن ماحول اراجک ہو جائے گا. اس سوال پر ایک یوا پردرشنکاری کا کہنا تھا.
اراجکتا والا استھتی تو ہم لوگ نہیں بنا رہے, سرکار بنا رہے. سرکار مطلب بہری ہو چکی ہے, گونگی ہو چکی ہے, اندھی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا, پارلیمنٹ اندھی ہو جاتی ہے, بہری ہو جاتی ہے, گونگی ہو جاتی ہے. تو سڑک سنسد بن گیا, تو شاہین باغ سنسد کا مثال قائم کیا ہے.
سوال یہی ہے کہ سرکار اور پردرشنکاری دونوں ہی جب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ کیا ناگرکتا قانون کے خلاف پردرشن اور تیز ہوں گے, یا پھر دھیرے دھیرے یہ ختم ہو جائیں گے؟ فی الحال سپریم کورٹ نے بات 1 مہینے کے لیے ٹال دی ہے. دلنواز پاشا, بی بی سی دلی.
اور دلنواز پاشا کی اس رپورٹ کے بعد اب بات کرتے ہیں چین میں پھیلے کورونا وائرس کی. وشو سواستھ سنگٹھن نے بھی اس سندربھ میں آج دیر شام ایک آپات بیٹھک بلائی ہے. اس بیٹھک میں دنیا بھر کے وشیشجھ یہ طے کریں گی کہ کیا اس وائرس سے پھیل رہی بیماری کو انتراشٹری سواستھ آپات کال گھوشت کیا جائے یا نہیں. لندن میں وشیشجھوں نے پریس کانفرنس کر اس وائرس کے بارے میں اور جانکاری دی. امپیریل کالج لندن کے پروفیسر نیل فرگیوسن نے کہا کہ ویگیانک اس بات کو لے کر چنتت ہیں کہ کہیں یہ وائرس انفلوئنزا جیسا خطرناک نہ ہو جس نے سال 1918 میں دنیا بھر میں 5 کروڑ لوگوں کی جان لی تھی. ان کا کہنا تھا,
You could say, well, we have flu all the time. Why do we worry about pandemics? It's because novel viruses can spread much faster through the population than viruses which circulate all the time.
آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلو تو ہمیشہ ہی ہو جاتا ہے, اس میں ہمیں مہاماری کی چنتا کیوں کرنی چاہیے. لیکن ایک نیا وائرس جس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہوتا ہے وہ تیزی سے لوگوں میں پھیلتا ہے. دوسری یہ کہ سیزنل فلو میں موت کی در 1000 لوگوں میں سے کیول 1 سے بھی کم ہوتی ہے, جبکہ اس وائرس کے کارن موت کی در 2% تک ہونے کی آشنکا ہے. اور 2% کی در کا مطلب ہے کہ اس کی تلنا 1918 میں آئے انفلوئنزا یا اسپینش فلو سے کی جا سکتی ہے. اس لیے یہ دنیا بھر میں چنتا کا وشے ہے. یہ تھے پروفیسر نیل فرگیوسن کے شبد. چین میں اس وائرس کی وجہ سے ابھی تک 9 لوگوں کی موت ہو چکی ہے, وہیں سنکرمت لوگوں کی سنکھیا بھی بڑھ کر 440 ہو چکی ہے. امریکہ میں بھی وائرس کے سنکرمن کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے. یہ نیا کورونا وائرس دسمبر مہینے میں سب سے پہلے پکڑ میں آیا تھا, لیکن اب یہ چین کی سیما کو پار کر کے دوسرے دیشوں میں بھی پہنچ چکا ہے. اسے لے کر بھارت میں بھی اب سترکتا برتی جانے لگی ہے. دیش کی راجدھانی دلی سمیت ممبئی, چنئی, بنگلورو, حیدرآباد, کوچی اور کولکاتہ ہوائی اڈوں پر تھرمل اسکریننگ کی ویوستھا की गई है। चीन और हांगकांग से लौटे यात्रियों की थर्मल जांच की जाएगी। यात्रियों को विमान में चढ़ने से पहले सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म भरना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार देश के 7 हवाई अड्डों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मंत्रालय का कहना है कि वे इन सभी हवाई अड्डों के संपर्क में हैं ताकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जा सके। इनके साथ ही इन सभी हवाई अड्डों पर उद्घोषणा में भी वायरस को लेकर सूचना दी जा रही है। खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी जा सकता है। और अब बात भारत प्रशासित कश्मीर की। कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी लगने के कारण स्मार्टफोन का व्यापार लगभग खत्म हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल 5 अगस्त को भारत की केंद्र सरकार ने कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया था। इस फैसले के साथ साथ सरकार ने पूरे घाटी में टेलीफोन, इंटरनेट वगैरह पर भी पाबंदी लगा दी थी। टेलीफोन पर तो बहुत हद तक पाबंदी हटा दी गई है, लेकिन इंटरनेट पर पाबंदी अब भी बरकरार है। सुनिए श्रीनगर से रियाज मसरूर की ये रिपोर्ट।
कश्मीर में स्मार्टफोन अब केवल एक महंगी घड़ी बन के रह गया है। निकटतम 6 महीनों से इंटरनेट पर प्रतिबंध से जहां व्यापारियों और छात्रों को कठिनाइयों का सामना है, वहीं तेजी से फल फूल रहे स्मार्टफोन बिजनेस को जबरदस्त धचका लगा है। लाल चौक में स्मार्टफोन के एक स्टोर के मालिक मुनीर अहमद कुरैशी कहते हैं कि हर महीने 40,000 से अधिक स्मार्टफोन्स की बिक्री केवल कश्मीर के 10 जिलों में होती थी और पिछले कुछ महीनों से ये संख्या अब घटकर 2,000 से भी कम रह गई है।
इंटरनेट से बंद होने से हमारा जो सेल हो गया ना, एटलीस्ट हमारा डिप हो गया, हमारा सेल 5% रह गया। हमारे पास एम्प्लॉय रहते थे 13-14 एम्प्लॉय, आज के डेट में हमारे 4 एम्प्लॉय, हम उनका भी नहीं निकाल सकते तो कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं।
स्मार्टफोन स्टोर में काम करने वाले हजारों युवा भी परेशान हैं। उनका कहना है कि कई वर्षों से इस काम में जुटे थे मगर अब ये व्यापार ही जैसे ठप पड़ा है। ऐसे ही एक सेल्स पर्सन इरफान अहमद कहते हैं,
अगर सिचुएशन यही रहेगी, इंटरनेट फिर से बंद रहेगा तो कंपनियां यहाँ से जॉब कट कर रही है, एम्प्लॉयज निकाल रहे, बिकॉज ऑफ रीजन ये है कि बिजनेस नहीं हो रहा हमारा।
लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के प्रशासन ने कश्मीर के 2 जिलों बांडीपोरा और कुपवाड़ा में धीमी गति वाले 2G इंटरनेट को बहाल करने की घोषणा तो कर दी है, परंतु इन जिलों के नागरिक कहते हैं कि इन्हें केवल सिग्नल मिला है, इंटरनेट चल नहीं रहा। सरकार ने पूरे जम्मू और कश्मीर के 2 जिलों में इंटरनेट पर 153 व्हाइट लिस्ट वेबसाइट्स के बगैर बाकी सब कुछ प्रतिबंधित कर दिया है। व्हाट्सएप और यूट्यूब समेत सभी तरह के सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध है। लाल चौक में ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष बशीर अहमद भट्ट कहते हैं कि व्यापारी इस प्रतिबंध से सड़क पर आ गए हैं।
ऑलरेडी हम तो सड़क पे आ ही गए हैं, उसके बाद जमीन बोस हो जाएंगे और कुछ नहीं होएगा, बिकॉज वी आर सफरर।
सरकार ने चंद दिन पहले एक घोषणा पत्र में कहा था कि पाकिस्तान में स्थित चरमपंथी गुट इंटरनेट का प्रयोग करके कश्मीर में अशांति फैलाना चाहते हैं, इसलिए इंटरनेट अगर बहाल भी होगा तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध जारी रहेगा। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
और जैसा कि आप जानते हैं बीबीसी हिंदी रेडियो प्रसारण अब बंद होने जा रहा है। नमस्कार भारत पहले ही बंद हो चुका है और शाम में होने वाला कार्यक्रम दिन भर भी इस महीने के आखिर में बंद हो जाएगा। हम आपको बीबीसी के पुराने लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। इस सिलसिले में आज सुनिए रामदत्त त्रिपाठी को। रामदत्त त्रिपाठी ने यूपी से बरसों बरस बीबीसी के लिए रिपोर्टिंग की है।
आपसे सैकड़ों बार बातें हुई हैं, लेकिन इतनी मुश्किल कभी नहीं हुई। दुनिया के लिए आपकी एक पसंदीदा और विश्वसनीय खिड़की बंद होने जा रही है। कई बार लोग पूछते हैं कि आपको दूर दराज की सूचनाएं इतनी जल्दी कैसे मिल जाती हैं। मुझे अनेक ऐसे अवसर याद हैं जब घटनाओं की सूचनाएं आपसे मिली और घटना स्थल पर पहुंचने में भी मदद मिली। कुछ सालों पहले फतेहपुर जिले में एक ट्रेन दुर्घटना हुई तो उसकी सूचना मुझे वहीं गांव के एक व्यक्ति ने दी जो पटरी के किनारे जानवर चरा रहा था। नेपाल के संकट काल में भी श्रोताओं से बहुत सूचनाएं मिलती थीं। आज भी लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने बीबीसी सुनकर प्रतियोगी परीक्षा पास की। समाचार संकलन में ये लोग मेरे सबसे बड़े मददगार रहे हैं। आपका यह प्रेम ही हमें ऊर्जा और ताकत भी देता है। मुझे याद है 6 दिसंबर 92 का दिन, जब कार सेवक अयोध्या की विवादित बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने लगे तो टेलीफोन के तार भी तोड़ डाले और मानस भवन के ऊपर आकर पत्रकारों को भगाने लगे, कैमरे छीनने लगे, कई पत्रकारों को मारा और कैमरे तोड़ दिए। लेकिन मैं और मार्क टुली ये सारा जोखिम उठाते हुए भी आप तक खबरें पहुंचाने के लिए अयोध्या के बाहर बाहर फैजाबाद तार घर गए। चाहे इमरजेंसी का दौर था जब खबरों पर सेंसर था, या अब जबकि कहने को मीडिया स्वतंत्र है, स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरों के लिए बीबीसी की उपयोगिता हमेशा रहेगी, बल्कि फर्जी और भ्रामक खबरों के दौर में आज जरूरत कुछ ज्यादा ही है। समय आ गया है कि भारत के मतदाता और करदाता अपनी सरकार से कहें कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को अपने नियंत्रण से मुक्त करें। उसके बाद भी आज की ग्लोबल दुनिया में बीबीसी की उपयोगिता कम नहीं होगी। टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में अब हिंदी सेवा इंटरनेट के जरिए आपके पास जाएगी, पर वे करोड़ों लोग उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट के लिए पैसा नहीं है, या फिर उनके इलाके में इंटरनेट ही उपलब्ध नहीं है। अब तो सरकार को बात बात में इंटरनेट सेवा बंद करने का भी चस्का लग गया है। उम्मीद करें कि यह बात लंदन वालों को भी समझ में आ जाएगी।
रामदत्त त्रिपाठी, बीबीसी, लखनऊ।
तो आपने सुना रामदत्त त्रिपाठी को, जिन्होंने, जैसा कि मैंने पहले बताया था, उत्तर प्रदेश से बरसों उन्होंने बीबीसी हिंदी के लिए रिपोर्टिंग की, चाहे वो 1992 में बाबरी मस्जिद का ढहा जाना हो या 80 के दशक और 90 के दशक में यूपी में सांप्रदायिक दंगे हो या कोई और भी बड़ी खबर हो, सब कुछ आपको लेकर फौरन आते थे, सटीक खबरें देते थे रामदत्त त्रिपाठी। और अब बात दुनिया जहान की। लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि अफ्रीका की सबसे अमीर महिला इजाबेल डॉश सेंटोश ने अपने देश का दोहन करके अरबों दौलत बनाई। अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जे एडवार्डो डॉश सेंटोश की बेटी ने संदिग्ध सौदे किए और उनको देश की कीमती संपत्तियां खरीदने की अनुमति थी। हालांकि इजाबेल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए इसे अंगोला सरकार की बदले की कार्रवाई बताया है। आखिर अंगोला कैसा राष्ट्र है और गरीबी होने के बावजूद इतनी संपत्ति इजाबेल ने कैसे अर्जित की? आज के दुनिया जहान में इसी पर रोशनी डाल रहे हैं बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद।
दुनिया जहां। दक्षिणी अफ्रीका में बसे अंगोला के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। किम्बुडू भाषा में अंगोला का अर्थ राजा होता है। 100 साल से अधिक समय तक पुर्तगाल का उपनिवेश रहे अंगोला की राष्ट्रीय भाषा पुर्तगाली है। अंगोला प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। लुआंडा इस समय अंगोला की राजधानी है। अंगोला का स्वतंत्रता आंदोलन बाकी अफ्रीकी देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। अफ्रीका में स्वतंत्रता का आंदोलन 60 के शुरुआती दशक में शुरू हुआ और इसका भारत से बहुत गहरा संबंध है। अफ्रीका के कई देशों में भारतीय राजदूत रहे दीपक वोहरा कहते हैं कि 1961 में जब गोवा में लोगों ने पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा तो उसकी प्रतिक्रिया अंगोला में भी देखने को मिली। वो कहते हैं,
जो पोर्चुगीज कॉलोनीज थी अंगोला, मोजाम्बिक, गिनी बिसाओ, केप वर्ड एक्सेट्रा, उनको ये बताया गया था, जैसे कॉलोनियल कंट्रीज हर जगह करती हैं लोकल लोगों को, कि भाई हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और आप हमसे टक्कर नहीं ले सकते। बट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे सर्टेन एक्शन दैट इंडिया टुक इन 1961 दिसंबर, उसका रिपरकशन अफ्रीका में पड़ा, खासतौर पोर्चुगीज अफ्रीका। वो एक्शन क्या था? द लिबरेशन ऑफ गोवा। तो वहां पे ये खबर पहुंच गई, अरे तो हिंदुस्तानियों ने पोर्चुगीज को पीट दिया है, वहां पे भगा दिया है गोवा से, कि आर्मी ने सरेंडर किया है। नाउ आई नो दिस बिकॉज आई यूज्ड टू स्पीक टू द लीडर्स ऑफ गिनी बिसाउ इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड ऑल्सो टू डॉक्टर ऑगस्टिनो नेटो, हु इज द फादर फिगर ऑफ मॉडर्न अंगोला। तो उनसे जब मैं बात करता था, वो कह रहे थे कि हमें इंस्पिरेशन मिला था फ्रॉम व्हाट इंडिया डिड टू द पोर्चुगीज।
उन्नीस 1975 में अंगोला को पुर्तगाल से स्वतंत्रता मिल गई, जिसमें ऑगस्टिनो नेटो के पॉपुलर मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अंगोला यानी PMLA की बड़ी भूमिका थी। आजादी के बाद PMLA के नेता ऑगस्टिनो देश के राष्ट्रपति बन गए। उनका समाजवाद और मार्क्सवाद की ओर झुकाव था। दीपक वोरा कहते हैं,
तो कुछ देशों को डर लगा कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा देश, रिसोर्स रिच, यहाँ तो कुछ काम ठीक नहीं होगा फॉर अस। Then a lot of people, big powers got involved. अब कहा जाता है, you know, I have no hesitation in mentioning United States, South Africa, some of the European countries, उन्होंने अपोज किया ऑगस्टिनो नेटो को, and they supported the rebels. Most prominent amongst them was a movement called UNITA, the movement for the total independence of Angola, and led by a rebel leader called Jonas Savimbi. He was a bit of a legend. तो बहुत सीरियस लड़ाकू था। फिर क्या होता है, he used to occupy the countryside and government जो थी वो रहती थी in the main cities. अब ऑगस्टिनो नेटो को सोवियत संघ का सपोर्ट था, लेकिन that was not enough. Then Cuban advisors came, East Germans came. तो it became a proxy battleground in the Cold War.
1979 में ऑगस्टिनो नेटो की मॉस्को में कैंसर से मौत हो गई। नेटो की मौत के बाद जोजे एडवर्डो सेंटोस राष्ट्रपति बने, क्योंकि वो पार्टी में नंबर दो स्थान पर थे और वो बहुत प्रसिद्ध गुरिल्ला कमांडर थे। वो 38 साल तक देश के राष्ट्रपति रहे। हालांकि देश में विद्रोहियों के साथ गृह युद्ध जारी रहा और 2002 में विद्रोही नेता जोनस साविम्बी की मौत के बाद देश में युद्ध विराम लागू हुआ। इस दौरान देश ने बेहद गरीबी भुखमरी देखी। हालांकि आज भी 2% अंगोला के लोग ऐसी विलासिता का जीवन जीते हैं जैसा कोई बड़ा सा बड़ा अमरीकी या यूरोपीय देश का व्यक्ति भी नहीं जीता होगा, लेकिन 2.9 करोड़ की आबादी वाले देश में 30% जनता गरीबी रेखा से नीचे है और ये लोग दिन में $2 से भी कम कमाते हैं। अंगोला अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, साथ ही इसके पास हीरे के भंडार है। फिर भी वहाँ इतनी गरीबी क्यों है, दीपक वोहरा बताते हैं।
अगर आप देखना चाहें, एग्रीकल्चर इज सुपर्ब, द लैंड इज वेरी फर्टाइल, पानी बहुत है, डायमंड बहुत सारे हैं, तेल बहुत सारा है, लकड़ी बहुत है, लवली फॉरेस्ट। बट हैविंग सेड ऑल दैट, पॉवर्टी इज अनबिलीवेबल बिकॉज द मनी वॉज बींग लूटेड, वॉज नॉट बींग इन्वेस्टेड इन टू द कंट्री, वॉज बींग टेकन आउट। $2 billion तो हमें बताया जाता था पिछले साल तक, बल्कि वो तो 3 billion कहते थे, 4 billion के इस लेडी के पर्सनल वेल्थ है। अब इतना पैसा बाहर ले जाना आसान नहीं होता, बट इट वॉज टेकन आउट थ्रू सेल कंपनी।
अंगोला में एक पार्टी प्रणाली है। स्वतंत्रता के बाद PMLA ही सत्ता में है, जिसका झुकाव वामपंथ की ओर है और इसकी वजह से रूस और चीन उसके करीबी रहे हैं। सितंबर 2017 में जोजे एडवार्डो डॉस सैंटोस अपने पद से हट गए, जिसके बाद जोआओ लोरेंसो नए राष्ट्रपति बने। तेल और हीरे के अलावा कृषि भी अंगोला की अर्थव्यवस्था में शामिल है। अंगोला की जमीन उपजाऊ है और साथ ही उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कृषि उद्योग बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। अंगोला का 3 बार दौरा करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ्रीकन स्टडीज के प्रोफेसर सुरेश कुमार कहते हैं कि वहाँ चीन का बहुत अधिक प्रभाव है। तेल, हीरे और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों में चीन की सबसे अधिक कंपनियां हैं। वो कहते हैं,
ओपन मार्केट के तहत अंगोला के अंदर आज भी चाइना का जो प्रभाव है आर्थिक क्षेत्र में, वो बिल्कुल साफ तरीके से देखा जा सकता है। चाहे वो ऑयल निकालने को लेके कंपनीज हैं या डायमंड की कंपनीज हैं यहाँ, और चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कंपनीज हैं, उन सभी में चीन की कंपनियां जो हैं वो बहुत अधिक बहुतायत हैं मात्रा में। और न सिर्फ कंपनीज वहां पर हैं, मैंने जो है वो वहां पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे थे, रोड्स बन रहे थे, मैंने वहां पे चाइना लेबर देखी है, जो मजदूर है वो भी चाइना से ही लाया गया था अंगोला के अंदर। लेकिन पिछले जो है वो 2017 के बाद से जो है वो, क्योंकि वहां बेरोजगारी ज्यादा है, वहां पे करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, उसको इन सबको देखते हुए, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज बहुत कम है, आप सोशल सिक्योरिटी नहीं है।
कई अफ्रीकी देशों की तरह अंगोला में भी भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी इजाबेल के पास $2 अरब से अधिक की संपत्ति बताई जाती है। इजाबेल इस समय ब्रिटेन में रह रही हैं और मध्य लंदन में उनके नाम कई कीमती संपत्तियां हैं। बीबीसी पैनोरमा को 7 लाख लीक दस्तावेजों से पता चला है कि इजाबेल ने तेल और हीरे के कारोबार के जरिए अरबों डॉलर का अपना व्यवसाय खड़ा किया। इजाबेल ने अंगोला की सरकारी तेल कंपनी सोनांगोल के जरिए भी पैसा बनाया। उनके पिता ने 2016 में इस तेल कंपनी की कमान उन्हें दे दी थी। दीपक वोहरा बताते हैं,
ये जो एक देश है, मेरी प्रेडिक्शन ये है, इट्स राइप फॉर अनदर वायलेंट रेवोल्यूशन, दे नीड अ सेकंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और इस बार इनको आर्थिक आजादी चाहिए, दे नीड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, द लैंड बिलोंग्स टू इट्स पीपल। मैंने स्टार्वेशन देखा है, मैंने स्टंटिंग ऑफ चिल्ड्रन देखा है, आई हैव सीन हॉस्पिटल्स विदाउट मेडिसिन बिकॉज ऑन पेपर द मेडिसिन खरीदी गई है बहुत पैसा लगाकर, मच मोर देन फॉर एग्जाम्पल वी वुड पे इन इंडिया, पर दवाई आई नहीं था, सिर्फ इनवॉइस आया। और यहां तक कि जो हमें पता लगा था, ये जो लेडी थी प्रेसिडेंट की बेटी, हिज फेवरेट डॉटर, एक भाई भी था इसका, ही वॉज ऑल्सो, ये तो ऑर्डर करती थी डायरेक्टली टू द मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्विस। अब वो लोग भी मानते थे, वट एवर शी सेड वो मान जाते थे, नहीं मानते थे वो राष्ट्रपति को कंप्लेन करती थी, वो हटा देते थे, नौकरी थे यहाँ जेल में डाल देते।
अंगोला में काफी पैसा होने के बावजूद भी वो बेहद पिछड़ा है, उसमें सुधार कैसे हो पाएगा? प्रोफेसर सुरेश कुमार कहते हैं कि अंगोला जब तक बंद अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा तब तक उसका विकास होना मुश्किल है। वो कहते हैं,
कुल मिला के अंगोला एक प्रतिभाशाली देश है और अंगोला के अंदर जो है वो आर्थिक विकास के बहुत आयाम है। अंगोला को जो है वो भारत ने भी जो है बहुत बार इन्वाइट किया है, अंगोला के बिजनेस मंडल्स भी हर साल आते हैं सीआईआई की मीटिंग्स में हमारी, लेकिन अंगोला को जब तक अपना वो राजनीतिक क्षेत्र में वो बहुदलीय व्यवस्था नहीं लाएगा, आर्थिक क्षेत्र में जब तक अपनी मार्केट को नहीं खोलेगा, उसका विकास जो है वो बहुत लिमिटेड रहेगा। उस विकास को खोलने के लिए उसे अपने आप को बहुआयामी बनाना पड़ेगा।
अंगोला में इतने सुधार कैसे हो पाएंगे ये तो नए राष्ट्रपति की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन इससे पहले अफ्रीका की सबसे अमीर महिला के खिलाफ अंगोला सख्त होता दिख रहा है। देश के प्रोसिक्यूटर जनरल ने वादा किया है कि इजाबेल को वापस स्वदेश लाने की सभी कोशिशें की जाएंगी। वहीं पुर्तगाली बैंक यूरोबिक ने इजाबेल से सभी व्यापारी रिश्ते तोड़ने की घोषणा की है। इस बैंक में अप्रत्यक्ष रूप से इजाबेल की 42.5% हिस्सेदारी थी।
तो मोहम्मद शाहिद के ज़रिए पेश किया गया ये प्रोग्राम, आपको ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें आपके खतों का इंतज़ार रहेगा। बहरहाल चलते चलते आपको ये बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आप जानते हैं कि दिल्ली के शाहीन बाग में एक महीने से भी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है और वहाँ महिलाएं खासतौर बड़ी संख्या में जमी हुई है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदा बेन भी शाहीन बाग पहुंची। कुछ लोग लिख रहे हैं फेसबुक पर कि ये शेयर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी भी शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई, तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी की पत्नी जशोदा बेन भी आज शाहीन बाग पहुंच गई 500 रुपये लेने। लेकिन क्या है सच्चाई, जानने के लिए आइए bbchindi.com पर और पढ़िए पूरी खबर। लेकिन चलते चलते प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी 144 याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद कहा कि सीएए पर बिना सुनवाई के रोक नहीं लगाई जा सकती। भारत विश्व डेमोक्रेसी इंडेक्स में 10 पायदान नीचे खिसक गया है। चीन सरकार ने वुहान की जनता को सलाह दी है कि वो मुख्य नेशनल हॉलिडे पर शहर से बाहर न जाएं ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। लेबनान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हसन दीब ने कहा है कि देश बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सऊदी अरब के प्रशासन ने उन खबरों को बेतुका बताया है जिसमें कहा गया है कि अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस का मोबाइल फ़ोन सऊदी के क्राउन प्रिंस ने हैक करवाया था। ईरान ने कहा है कि वो उस यात्री विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा की जाँच करेगा जो उसने गलती से मार गिराया था, हालाँकि ईरान के पास इस काम को करने के लिए ज़रूरी उपकरण नहीं है। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली रविशंकर कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।